नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय तथा क्षेत्रीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इंग्लैंड में 136 परिषदों की करीब 5000 सीटों और 6 मेयर पदों के लिए वोट डाले गए। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।